अन्वय आन्या के साथ औरंगाबाद पहुंचा था। रास्ते में राहुल और सिमरन भी उनसे मिल गए थे। आन्या को उनसे बात करने में अच्छा लग रहा था। अन्वय ज्यादा कुछ बोलता नहीं था, बस गुस्सा करता था, आंखें दिखाता था। वे दोनों मिलनसार स्वभाव के थे, इसलिए आन्या जल्द ही उनके साथ घुल मिल गई थी। वे चारों औरंगाबाद पहुंचे। अन्वय दोनों के बैग पकड़े हुए था। आन्या उन दोनों के साथ बात करते हुए धीरे धीरे चल रही थी। अन्वय ने सर घुमाकर देखा और तीनों को इतना पीछे देखकर वहीं रुक गया। कुछ देर में तीनों वहां पहुंचे। उसने नाराजगी से उन्हें देखते हुए कहा, थोड़ा तेज चलेंगे तो हम जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। हमें क्या कह रहे हो, धीरे तो तुम्हारी दोस्त चल रही है, अब तुम तो उसे छोड़कर आगे भागे जा रहे हो। हम तो उसे अकेला छोड़कर तेज नहीं चल सकते, सिमरन ने तुरंत जवाब दिया। अन्वय की नजरें आन्या की तरफ घूम गई। उसकी नजरों के सवाल को समझते हुए आन्या ने धीरे से कहा, वो बस के पीछे भागते हुए मेरी चप्पल टूट गई है, बहुत पुरानी है इसलिए टूट गई, मुझसे ऐसे चला नहीं जा रहा। अरे तो पहले बताना था ना, आगे ही दुकान है, चलो तुम्हें नई चप्पल दिला देंगे, राहुल ने उसे उदास देखकर मुस्कुराते हुए बोला। अन्वय की नाराजगी से भरी निगाहें आन्या पर टिकी हुई थीं। यहां राहुल की बात खत्म हुई और उसका फोन बज उठा। उसने बात की तो थोड़ा परेशान लगने लगा। क्या हुआ, तुम अचानक परेशान क्यों हो गए, सिमरन ने उसे परेशान देखकर सवाल किया। उसने उसे देखते हुए जवाब दिया, माँ का फोन था, पापा की तबीयत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल में है, हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा। हाँ तो आप दोनों चले जाइए और अंकल कैसे हैं फोन करके बता दीजिएगा, देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आन्या ने तुरंत ही उन्हें हिम्मत बंधाई। उसकी बात सुनकर दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। राहुल ने अन्वय को अपना नंबर देते हुए कहा, अब जान पहचान हो गई है तो कुछ जरूरत हो तो बता देना, टाइम मिलते ही हम मिलने भी आएंगे, कॉन्टैक्ट में रहना और आन्या का थोड़ा ध्यान रखना, लड़कियों के साथ इतने सख्त बनकर नहीं, थोड़ा प्यार से डील किया जाता है, राहुल ने उसे हिदायत दी। पर अन्वय के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने नंबर ले लिया पर कुछ नहीं बोला। दोनों ऑटो में बैठे तो आन्या ने उन्हें अलविदा कहा और ऑटो आगे बढ़ गया। अन्वय की नजरें उसी पर टिकी हुई थीं। सारे रास्ते में आन्या ने एक बार भी उससे बात नहीं की थी और अब भी उसकी तरफ देख नहीं रही थी। ये बात उसे थोड़ी अजीब लग रही थी। उसने उस पर से नजरें हटाई और आगे बढ़ते हुए बोला, चलो तुम्हारे लिए चप्पल ले लेते हैं, वरना जहां हमें जाना है वहां पहुंचने में तुम अगली सुबह कर दोगी। यहां भी उसकी अहंकार दिखाई दिया। वो तो आगे बढ़ गया पर आन्या अपनी लगे से नहीं हिली, वहीं खड़ी रही। अन्वय को इस बात का एहसास हुआ तो उसने उसकी तरफ घूमते हुए सवाल किया, अब चल क्यों नहीं रही, क्या चाहती हो, बाहों में उठाकर तुम्हें शॉप तक लेकर जाऊं, या मुझे कोई जादूगर समझा हुआ है कि दुकान को उठाकर तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं कि ना तो मैं जादूगर हूं, ना ही तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर कहीं ले जाने वाला हूं, तुम्हें अपने पैरों से चलकर ही दुकान तक जाना होगा और थोड़ा जल्दी चलना, हमें कहीं और भी जाना है। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे नई चप्पल नहीं लेनी, इसे ही सिलवा लूंगी, आन्या ने उसके चुप होने के बाद धीरे से कहा। उसकी बात सुनकर अन्वय की निगाहें उसकी चप्पल पर चली गईं, काफी पुरानी लग रही थी, दो चार बार सिलवा भी रखी थी। उसने चप्पलों को देखते हुए सवाल किया, और कितनी बार सिलवा कर पहनोगी, एक जगह बची है जहां से टूटी ना हो, और कितने सालों से इस चप्पल को घसीट रही हो। पता नहीं, याद नहीं है, शायद 5 साल हो गए, लास्ट टाइम टूटी थी तो मिसेस कावेरी सिन्हा को कहा था नई चप्पल दिला दे, ये पूरी टूट गई है तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और कहा पैसे क्या पेड़ पर रुकते हैं, तेरा बाप सारा दिन मेहनत करके 4 पैसे कमाता है और तू बस बेफिजूल की चीजों को खरीदने में उनकी मेहनत की कमाई उड़ाने पर लगी रहती है, वैसे ही तेरी पढ़ाई पर पैसा पानी की तरह बाहर है, सब तुझ पर ही लुटा देंगे तो मेरे और मेरे बेटे को सड़कों पर भीख मांगना पड़ेगा। उसके बाद मैंने दोबारा किसी चीज के लिए उन्हें कुछ नहीं कहा, कॉलेज की सैंडल टूट जाती थी तो मेरी दोस्त आरती अपने पैसों से सिलवा देती थी, एक बार उसने गुस्से में मेरी सैंडल फेंक दी थी क्योंकि वो पूरी टूट गई थी और उसी ने मुझे नई सैंडल भी दिलवाई थी, लेकिन जब मैं घर गई तो पापा की पत्नी ने उन्हें जाने क्या क्या सुना दिया कि उन्होंने सैंडल कूड़े में डाल दी और छड़ी से मुझे बहुत मारा, मेरे शरीर पर नील पड़ गए थे, मैं 1 हफ्ते कॉलेज नहीं गई थी, उसके बाद से मैं सैंडल चप्पल सब सिलवाकर पहनती थी। परसों मेरी सैंडल जंगल में गुम गई और दूसरी थी नहीं तो चप्पल पहनकर घर से भाग गई और आज ये फिर से टूट गई, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं सिलवा लूंगी तो ठीक हो जाएगी, आपको बेवजह पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, पहले ही बहुत एहसान है आपके मुझ पर, इतने एहसान मत कीजिए कि मैं कभी उतार भी ना पाऊं। अन्वय में जाने ऐसा क्या था कि जो बात आन्या सालों से अपने दिल में दबाकर रखती आई थी, अन्वय के सामने बेझिझक उसने वो सब कह दिया था। उसकी बात सुनकर अन्वय को उस पर दया आने लगी थी। उसने उसके सर पर हाथ रखा तो आन्या नजरें उठाकर उसे देखते हुए बोली, अरे आप इतने सीरियस क्यों हो गए, मैं ठीक हूँ, मुझे अब उन बातों को याद करके बुरा नहीं लगता, आदत हो गई है मुझे इन चीज़ों की, बचपन से उनके ताने और पिटाई ही खाती आई हूँ, अब तो दर्द भी नहीं होता। उसने कितनी आसानी से अपना दर्द अपनी मुस्कान के पीछे छुपा लिया। अन्वय ने दोनों बैग के हैंडल को एक हाथ में पकड़ा और दूसरे से उसकी कलाई पकड़ते हुए बोला, चलो तुम्हें नई चप्पल दिलाता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं अब आपका और एहसान नहीं लेना चाहती, आन्या ने उसका हाथ उससे छुड़ाते हुए कहा। अन्वय एक बार फिर उसकी तरफ घूम गया और उसकी आंखों में झांकते हुए गंभीरता से बोला, ठीक है नहीं लेना मेरा एहसान तो छोड़ देती हूँ यहीं तुम्हें, अपना इंतजाम खुद कर लेना, मैं क्यों तुम पर हर एहसान करूं। इतना कहकर उसने आन्या का हाथ छोड़ दिया, पर उसकी बात सुनकर आन्या ने झट से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं मुझे अकेले डर लगता है, मैं आपके साथ चलूंगी। उसकी बात सुनकर अन्वय के लबों पर तेजी मुस्कान तैर गई और वो उसकी हथेली थामे आगे बढ़ गया। एक गली छोड़कर ही उन्हें फुटवेयर की शॉप मिल गई, दोनों अंदर गए। अन्वय ने वहां काम करने वाले लड़के को आन्या के लिए अच्छी सी चप्पल और सैंडल दिलाने को कहा। आन्या ने कुछ कहना चाहा पर अन्वय की घूरती निगाहें देखकर खामोश हो गई। कुछ चप्पल और सैंडल ट्राई करने के बाद भी आन्या को कुछ समझ नहीं आया। अन्वय ने पसंद करने को कहा तो उसने सर झुकाकर जवाब दिया कि उसे पसंद करना नहीं आता, कभी कुछ खरीदा ही नहीं है, जो कावेरी जी लाकर देती वो चुपचाप रख लेती। आखिर में अन्वय ने ही चप्पल और सैंडल पसंद की और चप्पल उसे दे दी, सैंडल पैक करवाई और पैसे देकर दोनों शॉप से बाहर निकल गए। आन्या चलते हुए बार बार अपने पैरों को देख रही थी। ये बात अन्वय ने भी नोटिस की और उसके साथ चलते हुए ही उसने सवाल कर दिया, क्या हुआ, चप्पल पसंद नहीं आई, बार बार पैरों को देख रही है, अगर दूसरी पसंद हो तो चलकर दूसरी ले लो। नहीं, ऐसा नहीं है, चप्पल बहुत अच्छी है और आपकी पसंद भी बहुत अच्छी है, मैंने इतने वक्त बाद नई चप्पल पहनी है ना, बस इसलिए पैरों को देखकर खुश हो रही हूँ, कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे पैर, बस थोड़े गंदे हो गए हैं, आन्या ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए सब कह दिया। उसकी बात सुनकर अन्वय कुछ नहीं बोला, सामने देखते हुए चलने लगा। तो आन्या ने ही सवाल किया, हम कहाँ जा रहे हैं? रहने के लिए जगह का इंतजाम करने जा रहे हैं, इसके आगे कोई सवाल नहीं, चुपचाप मेरे साथ चलो, अन्वय ने सख्ती से कहा। उसके चुप होते ही आन्या बोल पड़ी,
तुम हमेशा मुझे चुप रहने को क्यों कहते हो? घर में मिसेस सिन्हा भी कुछ नहीं बोलने देती थी, कुछ बोलती थी तो मारने लगती थी, और अब तुम भी मुझे बोलने नहीं देते। एक काम करो, मेरे होठों को चुपका दो, फिर मैं चाहकर भी कभी बोल नहीं पाऊंगी तो सबको खुशी मिल जाएगी। आन्या ने नाराजगी से मुंह फुला लिया। उसकी बातें सुनकर अन्वय को एहसास हो रहा था कि उसने कितनी मुश्किल जिंदगी जी है। उसने अब कुछ नहीं कहा, हालांकि आन्या ने भी आगे कुछ नहीं कहा और मुंह फुलाए उसके साथ चलती रही। कुछ गलियां छोड़कर अन्वय एक घर के आगे रुका, डोरबेल बजाई तो अंदर से एक आंटी निकलकर बाहर आईं। अन्वय ने उन्हें नमस्ते किया तो उन्होंने भी उसे सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। फिर आन्या को देखकर बोली, ये गुड़िया कौन है, पहले कभी तुम्हारे साथ नहीं देखा, तुमने शादी कर ली? नहीं काकी, रास्ते में मिली थी, रहने के लिए घर की जरूरत थी तो मैंने सोचा जब तक कोई और ठिकाना नहीं मिल जाता यहाँ मेरे साथ ही रुक जाएगी, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? हमें क्यों एतराज़ होगा बेटा, आपका कमरा है, बस इज्जत से रहिएगा, आप चिंता मत कीजिए, हम बस रूममेट बनकर साथ रहेंगे, अन्वय ने उन्हें यकीन दिलाया तो आंटी मुस्कुराकर अंदर चली गईं। अन्वय अंदर आया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, आन्या भी खामोशी से उसके पीछे चल गई। ऊपर एक कमरा बना हुआ था, अन्वय ने बैग रखे और पॉकेट से चाबी निकालकर गेट खोला, फिर उसने गेट के बगल के स्विच बोर्ड से स्विच ऑन किया और कमरे में रोशनी फैल गई। वो बैग लेकर अंदर आ गया और उन्हें साइड में खड़ा करते हुए बोला, कमरा थोड़ा छोटा है, एडजस्ट कर लेना, मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है तो अपनी बकबक की दुकान को बंद रखना, यहाँ रहोगी तो मेरे नियमों को मानना ही होगा, वरना तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आन्या ने तो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, वो तो अपनी नजरें घुमाते हुए उस कमरे को देख रही थी। कमरा भले ही ज्यादा बड़ा नहीं था पर पूरे कमरे को सलीके से सजाया हुआ था। कमरे के बीच में पीछे की दीवार से लगाकर बेड था, उसके साइड में टेबल जिस पर लैंप रखा हुआ था, दूसरी तरफ शेल्फ बने हुए थे जिन पर काफी सारी किताबें रखी हुई थी। बेड के सामने एक टेबल रखा हुआ था जिस पर कुछ कागज रखे हुए थे। कमरे से जुड़ा हुआ ही बाथरूम था और दूसरी तरफ सेपरेट किचन था, और बैल्कनी भी थी और उसके बगल में बड़ी सी खिड़की थी जो फिलहाल बंद थी। बेड के ठीक सामने दीवार पर LCD लगा हुआ था, उसके बगल में ड्रेसिंग टेबल था और उसके साइड में अलमारी थी। व्हाइट कलर का पेंट हो रखा था कमरे में, बेड पर भी व्हाइट चादर बिछी हुई थी। कमरे में कम चीजें थीं पर फिर भी कमरा बहुत अच्छा लग रहा था। आन्या ने कमरे में नजरें घुमाते हुए कहा, ये जगह तो ऐसी लग रही है जैसे कोई पहले से यहाँ रहता है। मैं ही रहता हूँ, अन्वय ने सख्त आवाज में ही जवाब दिया। उसकी बात सुनकर आन्या की हैरत भरी निगाहें उसकी तरफ घूम गई। उसने आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखते हुए कहा, आपका घर तो नासिक में है ना, फिर आप यहाँ कैसे रह सकते हैं? और मैंने सुना था आपकी भाभी कह रही थी कि आप कोई काम नहीं करते हैं, फिर आपके पास कमरे के लिए पैसे कहाँ से आए? उसकी बात सुनकर अन्वय उसे तीखी नजरों से घूरने लगा। तब जाकर आन्या को एहसास हुआ कि उसने जो कहा वो उसे नहीं कहना चाहिए था। उसने अपनी जीभ को दांतों तले दबा लिया, चोर नजरों से अन्वय को देखा, उसकी घूरती निगाहों को खुद पर टिका देख आन्या ने मासूम सी शक्ल बनाकर सफाई दी, वो मैं बस सुन रही थी कि मेरे बारे में क्या बात हो रही है, आप सबकी बातें सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं था सच्ची। उसकी बात सुनकर अन्वय ने उस पर से नजरें हटाते हुए कहा, भाभी के साथ रहना पसंद नहीं था मुझे, इसलिए ज्यादातर यहीं रहता था, और मैं कोई निकम्मा निठल्ला आवारा लड़का नहीं हूँ, अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ मैं यहाँ, बस किसी को ये पता नहीं है, और अब तो लेक्चरर की जॉब भी मिल गई है, तो इतने पैसे रहते हैं मेरे पास कि खुद का खर्चा उठा सकूं। फिर तो बस मुझे ही अपने लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढनी है, आन्या ने सोचते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अन्वय के दिमाग में कुछ आया और उसने बेड पर बैठते हुए कहा, वैसे तुमने तो अब नए दोस्त बना लिए, अब तो तुम्हें इस अजनबी की जरूरत नहीं होगी, ये आपको किसने कहा कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है? आन्या ने झट से सवाल किया। उसका सवाल सुनकर अन्वय उठकर खड़ा हो गया और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे लगा आप तो तुम्हारे नए नए इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं तो तुम्हें मुझ जैसे अहंकारी अजनबी को झेलने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको झेल नहीं रही हूँ, मुझे आपके साथ अच्छा लगता है, और आप वो अजनबी हैं जो मेरे अपनों से भी ज्यादा अपने हैं मेरे लिए, जिनसे पहली बार मिलकर भी दिल को ऐसा लगा जैसे वो आपको बहुत पहले से और बहुत अच्छे से जानता है। इतना ही अपना हो तो मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी चप्पल टूट गई है और तुम्हें चलने में परेशानी हो रही है? अन्वय अब भी धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था। आन्या का दिल जोरों से धड़क उठा, उसने कदम पीछे हटाते हुए जवाब दिया, वो आप घर से निकलते वक्त मुझ पर कैसे चिल्लाए थे, गुस्सा कर रहे थे तो मुझे आपसे बोलने में डर लग रहा था, जब मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था तो तुम राहुल से क्या बात कर रही थी? अन्वय की तीखी नजरें आन्या के चेहरे पर टिकी हुई थी। वहीं आन्या घबराई हुई सी पीछे हटते हुए बोली, वो सब आपके और मेरे रिश्ते को गलत समझ रहे थे, मैं बस उन्हें बता रही थी कि हमारे बीच वैसा रिश्ता नहीं है जैसा वो समझ रहे हैं। तो कैसा रिश्ता है हमारा, क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा,
जो तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है कि मेरे साथ एक कमरे में रहने को भी तैयार हो गई। इस बार अन्वय के सवाल सुनकर आन्या परेशान नजरों से उसे देखने लगी। अन्वय ने उसकी खामोशी में की तो भौहें चढ़ाकर आंखों से सवाल किया। अब आन्या ने झट से कहा, दोस्त हैं हम। दोस्त कब बने हम? अन्वय ने अगला सवाल दागा। बेचारी आन्या के पास जवाब नहीं था तो उसने कुछ नहीं कहा।